वहां पर वो पूजित होते हैं। तो ये सब लोग सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, किसी को संदेह ही नहीं होता है। इसलिए वहां पर ठाकुर जी को जो भी प्रसाद कच्चा पक्का लगता है उसमें छुआछूत और सबका कोई विचार नहीं है, और सबके वो सर्वमान्य है, जगत के लोग उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं, ये प्रभु जगन्नाथ जी श्रीरंगम और सब तो भगवत स्वरूप ही हैं, किंतु और भी जितने भी प्रतिमाएं विश्व में हैं ठाकुर जी की, उनका आदर किस प्रकार से करना चाहिए? वो क्या वो सभी सच्चिदानंद घन हैं और उनकी पूजा करने से ही भगवान की पूजा हो जाएगी? एक प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, जितने विग्रह हैं एको अपि भगवान सच्चिदानंद विग्रह कृपया तत्र तत्र अस्ते तद्रूपया। उन्होंने कहा जितने भी विग्रह विश्व में हैं सब सच्चिदानंद है, और एक ही भगवान भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए पृथक पृथक स्वरूपों में लीलावस्तक विराजमान। हम उनकी प्रत्यक्ष रूप में सेवा नहीं कर सकते, जैसे प्रत्यक्ष रूप में लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, प्रहलाद महाराज जी ने सिंहदेव की सेवा करते हैं प्रत्यक्ष में। हम लोग कहेंगे जब प्रभु आप सोने का समय हो गया, आधी रात हो ये अभी तक आप सो नहीं रहे हैं, हमको बड़ी नींद आ रही है। पर प्रभु कहेंगे जी हमको नींद नहीं आती, तुम जा करके सो जाओ। तो जा करके हम सो जाएंगे। यदि ठाकुर जी बोलते और अपनी इच्छा से कहते जी हमारा पैर दबा दो, आज रसोई ठीक नहीं बनी है ऐसे बनाओ, तो हम उनकी जब हमारी ही इच्छा के अनुसार में कोई नहीं कर पाता है, कोई गुरु की सेवा भी वैसे गुरु जी के समान नहीं कर पाता है, तो भगवान यदि साक्षात रूप में रह करके कहें जी हमारी ये सेवा करो, तो कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु मौन मत डांटा, मौन होकर के लोगों की सेवा, अच्छा जितना कर रहा है इतना कर रहा है इतना ही ले, इतनी भी सेवा को वो बहुत आनंद करते हैं। इसलिए वो कहते हैं
भगवान तो भक्त वत्सल, भगवान भक्त बोलते ही नहीं।
तो भगवान के जितने भी विग्रह में सच्चिदानंद जीवों पर कृपा करने के लिए जब देखा जाए किसी प्रकार से इनके ऊपर में हमारा प्रभाव नहीं होगा और ये हमारा भजन नहीं करेंगे, अंततः प्रणाम तो कर ही लेंगे, इसलिए वो सिर्फ विग्रह के रूप में प्रकाशित हो गया। और जीवों को जितनी प्रकार की रुचि हो सकती है उनके रुचियों के अनुसार में सेवा लेने के लिए विभिन्न रूप धारण कर रखते हैं। कोई दासरस सेवा करेगा, कोई सख्य रूप से, कोई बात्सल्य से। कृष्ण लड्डू गोपाल क्यों हो गए? क्योंकि बहुत से लोग पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियां जो बड़ी हो गई हैं प्रौढ़ जिनके संतान हैं अपने बच्चों को सबसे अधिक सेवा करती हैं, पति की सेवा भी भूल जाती हैं, बल्कि पति से भी कहेंगे जरा बच्चे को लो मैं ये काम कर लूँ, उनको भी ये दे देंगे। अरे बच्चे को पकड़ नहीं सकते, बच्चे के लिए दूध ले आओ तो कह देंगे ना, कहाँ पति की सेवा करेंगे, पति के लिए हुक्म दे रहे हैं बच्चे की सेवा के लिए जाओ दूध ले आओ, बच्चे को बीमारी हो डॉक्टर बुला लाइए, बच्चे को स्कूल दे जाइए तब अपने सर्विस अपने काम पर जाएंगे, इसको स्कूल में लेते पहुंचाएंगे, तो बच्चे की सेवा हमसे कराया है? तो वो बच्चे के भाव को पसंद करते हैं बात्सल्य भाव, तो उनके लिए बाल गोपाल बन गए, किसी के लिए कुछ बन जाते हैं किसी के लिए कुछ बनते हैं, किंतु उनकी सब ये जितने विग्रह नहीं वो नित्य हैं ने? किंतु सेवा के लिए प्रभु ने इतने रूप धारण किए हैं, विग्रह बने हैं और बोलते नहीं हैं, बोलेंगे तो उनकी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता। रात में उनको ठंड लग रही है, रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और ऐसा भक्त है जो सो रहा है खूब, प्रभु से कहेंगे, बार बार कहेंगे, एक दिन कहेंगे, दो दिन कहेंगे, तीन दिन, चार दिन, रोज रोज कहने लगेंगे, तो फिर वो भक्त क्या करेगा? इसलिए वो चुपचाप मौन मर्द्या होकर के वैसे ही सेवा करते। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, हम दो आदमी लड़ गए और करताल लेकर के दूसरों से मारना मारामारी कर दिया, या लड़ने झगड़ने लिया, किसी का हाथ पकड़ करके तोड़ दिया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे, माने कुछ नहीं जानते, और वो चाहे तो क्या ना कर देंगे, किंतु कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक तो अपराधी और भी अपराध करेंगे, इसलिए कुछ बोलते नहीं है, चालते नहीं। किंतु हम लोगों को विचार करना चाहिए, वो सब देख रहे हैं, और जो कुछ हम कर रहे हैं धर्म कांटे पर वजन करके, और वो सब का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी के सामने पद प्रसारण करना, अधिक बोलना, किसी पर राग बिगाड़ना, किसी पर स्नेह करना, ठाकुर जी के सामने किसी पर स्नेह मत करो, ठाकुर जी के सामने किसी को भी प्रणाम मत करो, केवल और किसी को प्रणाम मत करो, जोर से बात मत करो, ये सब विचार है। और नहीं तो ऐसा, ठाकुर जी के घर में यहाँ से बिगड़ करके झगड़ा करके गए, और पुजारी को कहा कान पकड़ के जाओ उधर, और खूब बिगड़ करके, मैं नहीं कर सकता, और जा करके पूजा करने बैठ गए, चित्त चंचल है और बिगड़ रहे हैं, वो पूजा ठाकुर जी का होगा कि नहीं? अपराध हो जाएगा। इसलिए चंचल चित्त करके ठाकुर जी का पूजा इत्यादि सब नहीं करना चाहिए। किंतु ठाकुर जी चुपचाप मानो कुछ देखते ही नहीं है ये बैठे हुए, बड़े दयालु हैं। कभी कभी भक्तों का अपराध नहीं लेते, इसलिए सब प्रकार का साधन छोड़ करके जो लोग प्रतिमा का अर्चन करते हैं उनका कल्याण होता है। किंतु ये पूछ रहे हैं, ये प्रभु शास्त्रों में कहीं कहीं ये बतलाया गया है, जो प्रतिमा का अर्चन तो करता है किंतु भक्तों का अनादर करता है। जा हरे पूजां श्रद्धय हते, अर्चायां पूजा न तद भक्तेषु चान्येषु, और कहा गया है जो मांग सर्वेश भूतेषु संतम आत्मानम अनिश्वरम हित्वा अर्चां भजते मौध्यात भस्मनी एव जुहोत। जो लोग सब भूतों में विशेषकर के भक्तों में प्रीति नहीं रखते, भक्तों का आदर नहीं करते, और जीवों में मैं अधिष्ठित हूँ, प्रत्येक जीव में मेरा अधिष्ठान है, ऐसा कोई जीव है जिसमें कि भगवान नहीं है, और उनका वो अनादर करता है, मूर्ति की पूजा करता है, तो भस्म में घी ढालने के समान उनका ठाकुर जी का पूजा बेकार है। शास्त्र में कहा गया है। ये पूछ रहे हैं, आपने तो अर्चन की बड़ी महिमा बतलाई, किंतु शास्त्र में और विशेष करके श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी, नारद, व्यास और व्यास जी के वो पिता पराशर इत्यादि ये सब लिखे हैं। नारद जी स्वयं भक्ति सूत्र और नारद पंचरात्र इत्यादि के और मूर्ति के पूजा के प्रथम प्रवर्तक हैं, और उन्होंने ऐसा कहा, जो ऐसा यदि जो मांग सर्वभूतेषु संतम, मैं समस्त भूत और प्राणियों में हूँ, और जीव उसका अधिष्ठान है और भगवान उसके अधिष्ठात्री हैं, ऐसे लोगों की सेवा छोड़ करके उनकी अवमानना और निंदा करते हुए ठाकुर जी की पूजा करता है मौढ़्या, वो मूढ़ता वशतः उनका अनादर करता है, और वो रात में अरे आग में घी डालो तो कुछ काम होगा, भस्म मैंने देने से काम, तो वो जो वैष्णव की निंदा इत्यादि करता है और ठाकुर जी का अर्चन करता है, खूब भजन परायण है, यदि कहीं से आम आया, नीचे कोई रख दिया तो आम को फेंक दिया, ये सेवा में नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे ने देख लिया है। भोजन करते समय में मुख में कपड़ा बांध करके आटा गूंथने के समय में बोलना नहीं चाहिए, बोलने से क्या होगा? कुछ लोग विचार, वो सब मानता है कानून, किंतु भक्तों की निंदा करता है, भक्तों को ऊंचा नीचा देख समझता है। ऐसे लोगों का ठाकुर जी का अर्चन, ये जो लिखा गया है वो भस्म में घी डालने के समान है। और भी, अहम उच्चा वचै द्रव्यै क्रियो उत्पन्नानघे, ये श्रीमद्भागवत में ये सब बातें हैं, ये तृतीय अध्याय में कहते हैं, तृतीय अध्याय के 29 मैंने कपिल देव देवहूति के संवाद में कह रहा है। कौन कह रहा है? अहम कपिल देव कह रहे हैं, मैया अहम उच्चा वचै द्रव्यै क्रियो उत्पन्न यानघे, जो उच्च और अवच्य माने निम्न तरह के जो द्रव्य हैं, जैसे राबड़ी मलाई ये सब चीजें हैं, और पत्र पुष्प है, ये साधारण चीजें हैं। एक बताशा से ठाकुर जी का भोग दिया, एक राबड़ी मलाई और तरह से भोग दिया, षोड़शोपचार से पूजा ठाकुर जी की है, कोई पंचोपचार से किया, इसमें विशेष कोई अंतर नहीं है, भाव में अंतर हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि उच्च और अवच्च निम्न वस्तुओं से जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, नैव तुष्यते तुष्येत अर्चितो अर्चायान भूत ग्राम अवमानिन, प्रत्येक प्राणियों में भूतों में भगवान का निवास है, उनसे तो द्रोहाचरण करते हैं। कोई एक गरीब आदमी आया, थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, बस निकल जाओ, गए जाओ, नहीं गया तो हाथ पकड़ करके खींच करके एकदम बाहर सड़क तक, थोड़ा सा कुछ मांग रहा है, मुझे एक शीत के लिए कपड़े नहीं, क्या तुम्हारे बाप के यहाँ बपौती है? तुम्हारे बाप की बपौती है जो तुमको मिल गया? तो प्रत्येक जीवों में भगवान का निवास है, अधिष्ठान है। विशेष करके यहाँ पर भक्तों का संबंध अधिक बतला रहे हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं अनन्य रूप में, उनके प्रति किसी प्रकार से अवमानना हुई, समस्त प्राणियों को भी ले लिया, जिवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, चैतन्य चैतामृत में कहा गया। और हम लोग इसकी अवमानना करते हैं और अर्चन करते हैं खूब ठाट से, घंटा छोटे से नहीं चलता, टुनटुनिया अच्छी तरह से बड़ा सा घंटा लेकर के, और सब सामान वैसा रखा है, और किसी का अनादर करते हैं वैष्णव का, तो कहते हैं क्या, भगवान उस अर्चन पूजा से संतुष्ट नहीं हो करके बल्कि और उनके अपराधों को ग्रहण करते, जीवों का सम्मान। और भी कहा गया है, प्रतिमा मंद बुद्धि नाम, जो मंद बुद्धि वाले हैं वही लोग पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। एक जगह बतलाया गया है वो श्लोक, वैष्णव में जाति बुद्धि आर्चे विष्णु शिलाधीशु गुरु सुनर्व वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णु आ वैष्णवानं पदम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्ब बुद्धि विष्णु आ वैष्णवानं सामान्य बुद्धि जाति बुद्धि स एव गोखरः। जो लोग अर्चन के विषय में प्रतिमा में शिला की बुद्धि रखते हैं, ये शिला है, इसमें भगवान है, तो पत्थर किंतु इसके अंदर में भगवान है, ये शिला ही भगवान है ऐसा नहीं, इस शिला में भगवान, वैष्णव के चरण धूलि में साधारण धूलि बुद्धि और उनके पदोदक में साधारण जल बुद्धि। तीर्थ को खूब मानते हैं किंतु विष्णु वैष्णव के चरणामृत में तीर्थ बुद्धि नहीं रखते और कुनपे आत्म बुद्धि ये मरने वाले चमड़े हाड़ और मांस और रक्त के शरीर में पूज्य बुद्धि रखते हैं, देह में आत्मा रखते हैं, आत्मा है और आत्मा को कुछ नहीं समझते। ये भगवान का अंश और प्रिय है, भले ही बद्ध है कोई बात नहीं, किंतु है तो भगवान का स्वरूपतः दास, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान के भी बहुत से तरीके हैं, जैसा वैष्णव है उससे यथा योग्य सम्मान दिव्य जानी कृष्ण यथा योग्य। और ये नहीं करता है तो स एव गो खरह, गो माने जानवर और खरह माने जानवरों में गधा, गाधा गधा, क्यों जानवरों में गाय है ऐसा नहीं, गो माने नहीं गाय, माने गाय तो बड़ी पवित्र चीज है, गायों में भी जानवरों में गो माने यहाँ पर जानवर, जानवरों में सबसे बड़ा गधा है इत्यादि। प्रभु ऐसा ये क्यों कहा गया है जरा बतलाइए तो, ये ऐसा प्रतिमा में प्रतिमा को अर्चन करने वालों को भी ऐसा क्यों कहा गया? आपने तो बतलाया जैसे अर्चनकारी सभी महान सौभाग्यवान हैं, किंतु ऐसा भी देखा जाता। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल देने की चेष्टा करें, इन चीजों को समझ बूझ करके हमें और एकादशी के साथ में महाद्वादशी है और उसमें यज्ञ बराह भगवान का प्राकट्य तिथि भी है और इससे नित्यानंद प्रभु जी का भी संबंध त्रयोदशी से जुड़ जाएगा और इधर में बसंत ऋतु है, बसंत पंचमी अभी गई, अब राधा कृष्ण के होली के कीर्तन भी होंगे। आज कीर्तन हुआ कि नहीं होली का?
हुआ हुआ
हुआ है। तो आज बहुत सी तिथियों का समावेश है, ब्रह्मा जी के परार्ध में, दो परार्ध में, अर्थात जब उनकी आयु शेष हो जाती है तो महाप्रलय होता है, बड़ा भारी प्रलय होता है। उसमें कुछ अवशेष नहीं रहता, प्रकृति भी लीन हो जाती है और सब कर्णाब्धिशाही विष्णु में प्रवेश कर जाती है। ये तो महाप्रलय हुआ और एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में जो रात होती है जिसको कल्पांत कल्प कहते हैं, उसमें कभी ब्रह्मा जी के, जबकि एक दिन पूरा हुआ रात आई और उसमें भूर्भुवः स्वः तीनों ही पानी से भर गए, इसके बाद में महाभयंकर प्रलय हुआ, कोई प्राणी नहीं बचा भूर्भुवः स्वः। इसके बाद में प्रलय समाप्त हो गया तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि सृष्टि करेंगे। उसी समय स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी प्रकट हुए, उन्हीं ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी उनसे कहा जी सृष्टि करना चाहिए किंतु सृष्टि हो कैसे? इन दोनों ने पूछा पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि कहाँ होगी? ब्रह्मा जी ने सोचा भाई पृथ्वी गई कहाँ, कुछ पता नहीं चला उनको। तो उन्होंने कहा भगवान का हम ध्यान करते हैं अपने आराध्य देव का, उनकी इच्छा से ही प्रलय हुआ है और उन्हीं की इच्छा से ही सृष्टि होगी। उनका ध्यान धरा और चिंता करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनके नासा छिद्र से कुछ मैल जैसी मालूम हुई और एक छोटा सा मैल जैसा उनके नाक से निकला और देखते देखते पर्वताकार हो गया और पर्वताकार हो करके ये भी उनको उधर में दे दिया। पर्वताकार होकर पर्वताकार होकर के आकाश में अपने केशों को ऐसे ऐसे किया तो आप ही लोग रखते तो अच्छा होता, फिर इसको कपसेवा काम में लगा देती। ये उनको दे दो, वो गंथन करके ठीक रखेंगे, फिर हमको संभाल दे, इनको दे दो, यही खजांची है। तो
जटा का जिला है आकाश में,
एकदम बादलों से ऊपर आकाश में, और बादलों को चीर कर भीषण रूप में गर्जन करते हुए अपनी पूंछ को ऊपर कर और दोनों अगले पैरों को खुर को एक मिला करके और कूद गए। उस समय उसे विराट रूप में उठी लहर और वो महाजनत तक एकदम पहुंच गई। इसके बाद में शुकरों को, बराह को घ्राण शक्ति होती है, कोई भी चीज को नाक से सूंघेंगे और ये जो घ्राण है कहीं नहीं है, जल में नहीं, हवा में नहीं, आग में नहीं, आकाश में नहीं, केवल मात्र पृथ्वी में ही ये सुगंध है। इसलिए पृथ्वी से पैदा होने वाले चीजों से ही सुगंध निकलती है। पानी में गंध नहीं, मिट्टी का गंध मिल करके उसमें गंध हो जाता है। ये गुलाब और जितने भी फूल हैं वो सब पृथ्वी से निकलते हैं, इसलिए उसमें गंध है। तो सूंघ करके और उनको मालूम हुआ कि रसातल तक पृथ्वी चली गई है, बस वहां से रसातल से मैं पहुंच गए और वहां से लेकर पृथ्वी को ऊपर में ले आकर के पृथ्वी के धरातल पर मध्याकर्षण बिंदु में स्थापित किया, अंतर ध्यान हो गए, निकाल करके रख करके और सोरों जो है सोरों में अंतर ध्यान हुए, इसलिए वहां पर उनका विराट मंदिर और पूजा वहां पर होता है सोरों में। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु यही सब बतलाया जाता है। दूसरी बात, एक पांच बरा के उल्लेख शास्त्र में मिलते, एक तो वो हुआ और दूसरी बात भगवान ब्रह्मा के नाक से नहीं ऐसे ही निकले। जिस समय में पहली बार में जो बतलाया वो काले रंग के थे, इसलिए कृष्ण बारह कहलाते, और हिरण्याक्ष से उनका युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा था, ये कृष्ण बारह है। और दूसरे बारह का मिलता है शुक्ल बारह, वेदों को असुरों ने चुरा लिया और रसातल में रख दिया। कैसे रख दिया, चुरा लिया? जैसे वेद हमारे भारतवर्ष में संस्कृत वांग्मय में थे, जर्मन विद्वानों ने आकर के, मैक्स मुलर जर्मन था, उन्होंने देखा रे वेदों में अथाह ज्ञान है, इसे तो बम बनाया जा सकते हैं, एरोप्लेन का इसमें सब विवरण है और सब चीजों का इसमें विवरण है। बस वो संस्कृत पढ़ा और उनके अर्थों को पढ़ा जिसमें उसके अर्थ रहते हैं, ये सब पढ़ा और वेदों को लेकर के चला गया अपने देश में। यहाँ पर लोग किसी चीज को बेचने के लिए कागज रखते हैं और उसमें पुड़िया बांध देते हैं, तो पुड़िया बांधने के रूप में वो सब कागज लगते हैं। कलकत्ते के हमारे एक सेठ ने, जिनका नाम था मोर कोई उनका नाम, करोड़ों रुपए लगा करके उन्होंने समस्त पुराणों को छापा। एक दिन किसी कारण से वो बाजार गए, देखा कि चाक वाला उन्हीं पुराणों के पेजों को फाड़ फाड़ कर और चाक दे करके लोगों को दे रहा है। बहुत से लोग ऐसे मूल्यवान चीजों को ऐसे ही फेंक देते हैं, बेच देते हैं बिना पैसे का, उनका खूब व्यवहार होता है। जर्मन के लोग ले गए, आज वही जर्मन लोग अभी भी संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, जो हम लोग नहीं करते। अब तो अमेरिका वाले भी लोग संस्कृत पढ़ने लगे, भागवत गीता उपनिषद सब को लेकर के वो लोग ले गए, तो वो रसातल है ना, अमेरिका को तो नीचे ही, एकदम ठीक नीचे है, तो रसातल वाले ले गए ना, और उसका उपयोग व्यवहारिक रूप में स्थूल वस्तुओं के लिए करने लगे। असल ज्ञान जो भगवत भक्ति का था वो तो उनको मिला नहीं, क्योंकि वो तो सद्गुरु से होगा, और जो स्थूल चीजें हैं उनका वो व्यवहार करने लगे। इसी तरह से कभी कभी असुर लोग भी वेदों को चोरी कर रसातल में ले जाया करते हैं, भागवत को भी रसातल में ले जाएंगे, गीता को भी ले जाएंगे, और उसमें से अपने लायक जो बातें हैं स्थूल उसको तो ले लेंगे, और बाकी जो भीतर की रहस्यपूर्ण जो बातें हैं उनको तो ले नहीं सकते। उसी तरह से वेद को चोरी करके रसातल में वो लोग ले गए। उस समय में बारह भगवान शुक्ल मूर्ति धारण कर और उसको जाकर के उद्धार किया था, और एक बारह पुराण बारह जी का और मिलता है विवरण कि बारह भगवान जबकि देवता लोग हारने लगे और असुर लोगों की जीत होने लगी, तो उन लोगों ने यज्ञ में विष्णु की आराधना की, और उस समय में वही यज्ञ बारह के रूप में यज्ञ भगवान जो यज्ञ के सबको ग्रहण करने वाले प्रभु हैं, यज्ञेश्वर जिनको कहते हैं, बारह रूप में आए। उनके एक एक रोम कूप जो हैं वो वेदों के सब मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, पुरुष सूक्त इत्यादि हैं, उनके खूर चार वेद हैं, और इस तरह से ऋषियों ने उनका सब वर्णन किया है और उनकी आराधना की। एक चतुर्थ बारह जी का ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि पृथ्वी की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी बड़ी उबड़ खाबड़ है, पानी इत्यादि कहीं नहीं रुकता, खेती बाड़ी हो नहीं सकती, प्रजा लोग होते हैं किंतु खाएंगे क्या, उनके लिए तो खाना और पीना कपड़े लत्ते ये सब चाहिए, कपड़े भी कहाँ से आएंगे जो जरूरी नहीं हुई तो। इस तरह से प्रजाओं के मंगल के लिए कारण के लिए भाई कुछ ऐसी जरूरत है पृथ्वी पर खेती भी हो और वर्षा का पानी भी जम सके, इसलिए उन्होंने प्रभु की आराधना की, तो वो हरि बारह के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के अपने दांतों से और थूथनों से, दांत बड़े नोकीले होते हैं ऐसे ने? बड़े तीक्ष्ण होते हैं और अपने थूथन उनके बड़े मजबूत होते हैं, बस पृथ्वी को बड़े बड़े पहाड़ों को चूर्ण कर दिया और पृथ्वी को धरातल को उन्होंने समतल किया जहाँ पर कि खेती बाड़ी और ये सब चीजें हो सके, और फिर बीज देकर के पेड़ पौधे लताएं और औषधियाँ, औषधियों में गेहूं औषधि है, जौ औषधि है, धान औषधि, ये सब औषधियाँ हैं जो शरीर का पोषण करती हैं, ये सभी कुछ औषधियां हैं। उनमें से मनुष्यों ने अपने लिए उपयोगी जो चीजें हैं, जिन जिनको जानते हैं स्थूल है, उनका पृथ्वी पर कृषि के रूप में उनका दोहन किया। और इसके बाद में उसी समय जिस समय तोड़ रहे थे, बड़े परिश्रम हो रही थी, तो उनकी सेवा के लिए पृथ्वी जी ने देखा इनकी सेवा होनी चाहिए, तो उन्होंने सुकरी का रूप धारण कर लिया और उनकी सेवा की। उसी से उनको पुत्र पैदा हुआ नरकासुर, और एक कोई और पुत्र, दो पुत्र की बात लिखी गई। तो एक का तो मुझे पता नहीं, किंतु एक का तो पता है, नरकासुर। तो उसका नरकासुर नाम नहीं था, वो धारित्री पुत्र था, जैसे यशोदा नंदन है, धरित्री नंदन उसका नाम था, या कुछ ऐसे नाम था। किंतु दुष्ट लोगों के संग में रहने के कारण दुर्बुद्धि हो गई और वो अंत में भगवान कृष्ण के हाथों से द्वापर युग के अंत में मारा गया। इतना दिन तक वो जीवित था और उसी ने 16,000 राजकुमारियों को अपने जेलों के शिकंजों में बंद करके रखा था, जिसको कृष्ण ने पीछे से उनके साथ में विवाह किया था। उसमें से जो कृष्ण बारह हैं, जब अंतर ध्यान हो गए तो उन्हीं की मूर्ति को कुबेर जी पूजा करते थे स्वर्गलोक में, और पीछे से बारह जी उनके यहाँ पूजित होते थे। तो रावण ने उनका विमान अपहरण करने के लिए और लंका राज्य लेने के लिए चढ़ाई किया, और लंका को जीत कर और वो विमान छीन लिया, और छीन करके साथ साथ में इस मूर्ति को भी छीन लिया। तब से ये लंका में पूजित होती थी, विभीषण जी को पूजा करने के लिए दी गई थी ये। रावण तो तामसिक था, किंतु विभीषण जी उसकी पूजा उसी राजमहलों में करते थे रावण के आदेश से। पीछे से लंका विजय के बाद में रामचंद्र जी उसी मूर्ति को लेकर के अयोध्या में पधराया, उसकी पूजा उनके राजभवन में होती रही, सीता जी पूजा करती थी। पीछे से जब मथुरा, मैंने मथुरा नहीं था उस समय, मधुबन था, मधुबन में मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर उत्पन्न हुआ, वो अत्याचार करने लगा, तो ऋषियों ने उनको मरवाने के लिए, दमन करने के लिए रामचंद्र जी के पास वो लोग गए। रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, राज तिलक कर दिया उनको। बड़े पहले तो उन्होंने कहा, प्रभो भैया आज तक आपने हमको कोई भी सेवा नहीं दी, लक्ष्मण जी को सेवा दी, वो लड़ाई किए, भरत जी को भी आपने कुछ सुजोग दिया, किंतु आपने कोई हमें आदेश नहीं दिया। तो उन्होंने, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मधुपुरी का राज्य का, मधुबन का राज्य का राज तिलक उनको दे दिया। अब बड़े वो कठिन समस्या में पड़े, जब भाई को छोड़ करके हमको अब मथुरा में जाना पड़ेगा, अब इनके साथ में नहीं रहेंगे, हमको राजा बना दिया, ये तो वर के बदले अभी संपात हो गया, जो भाई की सेवा छोड़ करके मुझे रहा। बड़े दुखी हो गए। रामचंद्र जी ने समझाया, दुखी होने की बात नहीं है, इसमें भी विशेष कुछ कारण है, इसलिए तुम जाओ। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, किंतु आपके चरणों में मैं कुछ भिक्षा करना चाहता हूँ। तो क्या भिक्षा करना चाहते हैं? वो जो सीता जी जो बराज जी की पूजा करती हैं, जो आप लंका से ले आए, वो मूर्ति हमको दे दीजिए और हम आपके प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं की हम पूजा करके यहाँ पर रखेंगे और उनकी हम प्रतिष्ठा करके रखेंगे। तो प्रसन्न होकर के वो मूर्ति उनको दे दिया और उसी मूर्ति को लेकर के पूजन करते रहे, और उसी के कृपा से, वैसे तो वो विष्णु ही हैं, तभी तो मानो उन्हीं की पूजा से लवणासुर का उन्होंने वध किया और अपनी राजधानी मथुरा में उन्होंने आरंभ किया। तब से ये मधुबन मथुरापुरी के रूप में भी ये हो गया। इसलिए कभी कभी हम समझते हैं कि ये मथुरा ये द्वादश वनों से, वृंदावन से कुछ अलग है, किंतु कुछ अलग नहीं, मधुपुरी के अंतर्गत में ही ये मधुबन के अंतर्गत में ही ये मथुरापुरी है, और मधुबन में ही महाराज
वो कौन थे
मैंने एकादशी वाले दुर्वासा अम्बरीश महाराज जी इसी मधुबन में ही अतः यमुना के तट पर जहाँ अम्बरीश टीला है यहीं पर उन्होंने भगवान की आराधना कर की थी और एकादशी व्रत यहीं पर रह करके एक वर्ष कंप्लीट जितनी एकादशी होंगी हम पूजा उसमें उपवास करेंगे और यहाँ रहेंगे। राज्य था उनका मध्य प्रदेश में किंतु यहाँ पर निवास करके और जगहों में एकादशी कर किया जाता है उसका फल है, किंतु मथुरापुर में यदि एकादशी की जाए तो उसका फल कुछ और निराला है। और जगहों में काशी अयोध्या माया अवंतिका और सब जो पुरिया हैं या साधारण जगहों में भक्ति की जाएगी तो उसका फल तो है कुछ, किंतु यदि मथुरापुरी में वृंदावन में जो भी वो भक्ति हो जाए यहाँ पर निवास करके यदि हो तो कितना उसका महात्म्य होगा, बहुत बड़ा भारी महात्म्य होगा। इसलिए शत्रुघ्न जी ने इस पुरी को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बसाया। ऐसे तो पुरी नित्य है, जत्र सन्निहितो नित्य हरि, ऐसे तो नित्य है, किंतु व्यवहारिक लोग स्थूल दृष्टि वाले लोग नहीं देख पाते हैं। अभी भी वृंदावन में रास इत्यादि है और वैसा ही है, नंद भवन इत्यादि भी है, सब कुछ है, गोचारण कृष्ण करने रोज जाते हैं, ये बात सब ठीक है, किंतु तो वो गोचारण करने जाते हैं। मथुरापुरी में भी कृष्ण है, द्वारकापुरी में भी कृष्ण है, हम देख नहीं पाते हैं। तो शत्रुघ्न जी के पहले भी यहाँ पर मथुरा थी, कभी प्रलय में ध्वंस नहीं होती और सब समय वहां पर भगवान रहते हैं, किंतु जब प्रकट काल होता है उस समय जोग माया के भगवान की आत्म माया से जीवों का संपर्क और इस धाम के साथ में संपर्क होने से उस समय जो लोग उस समय जीवित रहते हैं सभी लोग उनको दर्शन करते हैं। अभी हम लोग दर्शन नहीं काट पा रहे हैं किंतु फिर भी मथुरा वही है और यहीं पर है, हम लोग मानो जाल के ऊपर से हैं। तो आज एकादशी और प्लस द्वादशी और कल कितने बजे के पहले
10 बजे तक
सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बाद में ठाकुर जी की पूजा करके और तब फिर उन्हीं के प्रसाद अन्न से पारण कर साधु वैष्णव भगवान सबकी पूर्ति कर। हाँ वही तक शत्रुघ्न जी लाए थे, वो तभी से यहाँ की स्थापना है, तभी से ये चल रहा है। कल हम लोग बैकुंठ में नारद ऋषि और गोप कुमार की बातों को हम लोग कर रहे थे। गोप कुमार ने पूछा श्री विग्रह के संबंध में, जो जगन्नाथपुरी में और श्रीरंगम में वहाँ बद्री नारायण में और ऐसे सिद्ध क्षेत्रों में जो सिद्ध अपने आप जो प्रकटित जो विग्रह हैं जिनको किसी मनुष्य ने प्रकट नहीं किया है, ये जगन्नाथ जी को भी वहाँ पर को भी श्रीरंगम वाले में भी वेंकटेश्वर को ऐसे को किसी ने प्रकट नहीं किया, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी पूजा और भगवान की पूजा दोनों एक, किंतु और सब लोगों की पूजा भी क्या उसी के बराबर है, उसका भी कुछ फल होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं कहीं कुछ शिव विग्रह के पूजा के विरुद्ध में कुछ बतलाया गया, पाषंडी भवित ध्रुवम स गो खरह, जो ठाकुर जी की पूजा तो करते हैं किंतु समस्त प्राणियों में भगवान का अधिष्ठान नहीं जान करके उनका द्रोहाचरण करते हैं, उनका निंदा करते हैं, उनका अवमानना करते हैं, अपमान करते हैं, वो लोग गोखर हैं और वो लोग नरकगामी होते हैं। जो लोग प्राणियों के अंदर में, जीवों के अंदर में, भूतों के अंदर में भगवान का दर्शन नहीं करते या नहीं मानते, उनसे लड़ाई झगड़ा और ये सब करते हैं, वो लोग भी ठाकुर जी उनकी पूजा को ग्रहण नहीं करते। विशेष करके एक बात बतलाया है, बहुत से लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं, बहुत से लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं, किंतु विरले लोग ही ठाकुर जी की पूजा करते हैं। पूजा करने ऊपर से दिखने पर भी ठाकुर जी की पूजा नहीं करते। मान लिया कि कहीं पर ठाकुर जी की पूजा हो रही है ना? कोई आदमी धनाढ्य व्यक्ति लगे हम 50,000 रुपये दे रहे हैं और ठाकुर जी का बंगला बिहारी जी के बंगला हो ना? बड़े बड़े धनी लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उस धनी ने ठाकुर जी का बंगला के लिए क्यों दिया? ऊपर से मालूम पड़ता है आज ठाकुर जी की बड़ी भारी उसने सेवा की, किंतु उसने देखा वो जो व्यक्ति दिया उसके मन की भावना कहाँ है, उस पर निर्भर करता है ठाकुर जी का सेवा ग्रहण करना। अन्यथा वो पूजा होगी या नहीं होगी इसमें संदेह की बात। यदि उसने ये देखा भाई 50,000 रुपया खर्च करेंगे और कलाकार कहाँ कहाँ से, आगरे से और कहाँ कहाँ से हम बुलाएंगे, लोग देखें जी हमारा वैभव कैसा है, ठाकुर जी का मैं कैसा पूजा करता हूँ, ये यदि उसकी भावना रही और उसमें लिख दिया नीचे फूल चांद मथुरा वाले की तरफ से ना, ठाकुर जी की यह सेवा फूल चांद मथुरा वालों की तरफ से, तो ये पूजा कितनी ठाकुर जी ने ग्रहण किया कि नहीं? नाम न देने पर भी और नाम नहीं देने पर भी यदि हृदय की भावना है, जो लोग देखें, लोग कहें जी हमने ठाकुर जी की सेवा, ऐसे ठाकुर जी का कभी नाम नहीं लेते, कोई सेवा नहीं करते। ठाकुर जी की सेवा करते हैं इसका प्रमाण क्या है? यदि किसी वैष्णव की, साधुओं की, संतों की सेवा, गरीबों की कुछ सहायता करें, तब तो उसमें समझ में आ जाएगा यहाँ ये ठाकुर जी की सेवा। और ये लक्षण है नहीं, कोई संत गया उसके पास, अरे जाओ जाओ, वहां पर अल्सिशियन डॉग रख रखा है, दो दरवान है वहां, लाल कपड़ों वालों को मत आने देना, और भीतर से कुत्ते को कहे तू 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 करके उस पर लगा देगा, छोड़ देगा। एक आदमी को एक दिन काट देगा, वो हंसेगा और ये अब वो कभी नहीं आएगा यहाँ, और उधर में वो काम हो रहा है। अभी मान लो कि 2.5 लाख रुपया लगा करके उनका द्वारकाधीश में 56 भोग हुआ और उसकी प्रसाद बड़े बड़े लोगों के यहाँ सब जगह बता मांग। अच्छा, वो जो 56 भोग हुआ ठाकुर जी ने ग्रहण किया हुआ है कि या नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर में निर्भर करता हूँ। और एक आदमी ने कुछ नहीं किया, एक तुलसी का पत्ता बड़े प्रेम के साथ में उठा करके ठाकुर जी के सामने, और सब वैष्णवों को प्रणाम करता है, और वही तुलसी का पत्ता ठाकुर जी को लगा करके उसको एक एक आधी 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 का आधा प्रसाद को बांट रहा, अब दोनों में पूजा कौन सी बड़ी हुई? इसलिए ठाकुर जी किसकी पूजा करते हैं? जज्जत धियो, श्लोक इसमें दिया है। आज समय हो गया है ना, 6:30 बजे। इसलिए संक्षेप में केवल एक बात उसमें से बतलाई, उसमें बहुत सी बातें हैं अर्चन के संबंध में, पूजा के संबंध में, ठाकुर जी की प्रतिमा की पूजा करने के संबंध में हम सब लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए, और नहीं जान करके यदि करेंगे ना बस अपराध हो जाएगा। ठाकुर तो अपने आप आत्म काम और आपका आराम है, उनको किसी की सेवा और किसी की भोग की किसी की कोई जरूरत नहीं है, न भूख है, न सर्दी है, न गर्मी है, उनको कुछ है नहीं। तब यदि हमारे अंदर में वैष्णवों के प्रति श्रद्धा का भाव और जीव मात्र में ही भगवान का अधिष्ठान का भाव है, और इस तरह से यदि वो ठाकुर जी का सेवा करता है तो ठाकुर जी को भूख लग जाती है, वो सेवा को ग्रहण कर लेता है। अन्यथा भूतद्रोही व्यक्ति, भूतद्रोही माने समझते हैं ना, भूतद्रोही, और भूतद्रोही में से यदि कोई हरिनाम थोड़ा सा करता है, कनिष्ठ अधिकारी भी है, और उनको मारता पीटता है, कोई सेवा करने के लिए घर बार छोड़ करके आया है, अब बेचारा घुसी लगा दिया, उसे द्रोह कर रहा है, उसको भगा दिया, भजन से हटा दिया, या उससे भी उन्नत अधिकार वाला कोई मध्यम अधिकारी है, उनका अपमान कर दिया यदि कभी, तो कोटि कोटि पुण्य भी जितने हैं ना सुकृति वो सब कुछ छीन करा दिया। और यदि उत्तम भागों के प्रति यदि वो भाव हो गया तो भगवान कभी उसकी पूजा लेंगे कभी नहीं ले सकते। इसलिए रावण बराह जी की पूजा करता था या करवाता था, प्रभु ने पूजा लिया, शंकर जी